ولعنة الدعيم على أعداء الله وأعداء كتاب الله وأعداء رسول الله وأعداء آل رسول الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله الآخر الأحد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أقيلة بني هاشم شريكة الحسين زينب الكبرى سلام الله عليها، والسلام على زين للعابدين وسيد للساجدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سورہ ملک کی یہ بگننگ ہے، بالکل کل بھی اسی آیت کو ہم نے تلاوت کیا، کیونکہ جو موضوع جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں سیکولرزم اور مذہب کے عنوان سے، تو یہ آیت اصل میں خدا کی پوری کائنات کے اوپر خدا کی حکومت اور خدا کی سلطنت اور خدا کی قبضے اور ملکیت کو بیان کرتی ہے. اگرچہ اور بھی آیات قرآن مجید کی ہیں جو اس موضوع کو لے کر گفتگو کر رہی ہیں. آج ہم چاہیں گے تھوڑا سا ایک انٹرو کے طور پر اس آیت کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کی جائے. تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک یعنی اسی برکت سے ہے جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، بارک سے یبارک مبارک جو ہم کہتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، یہ ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں. تو یہاں پر استعمال تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں پورا جو ہے سلطنت ہے، پورا ملک ہے، ملک و ملکوت سب اس کے قبضے قدرت میں ہے. کیونکہ اور آیتیں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ملک و ملکوت سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے. اب جو ہے یہ آیت اصل میں یہ بتانا چاہ رہی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹ آف مسلم کنٹریز ان کے کانسٹیٹیوشن کے بگننگ میں ایک شک، یعنی ایک میرے خیال میں آغاز میں ہی ڈالی جاتی ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، یا بعض جگہ میں لکھتے ہیں حاکمیت مطلق صرف اللہ کی ہے. یہ مسلمان ملکوں کے اکثر جو کانسٹیٹیوشن آپ دیکھیں گے، آئین دستور بنتا ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ مطلق حاکمیت خدا کی ہے. خدا کسی کو حاکمیت کی اجازت دیتا ہے تو پھر وہ حق رکھتا ہے کہ وہ حکمرانی کرے. اگر خدا کی اجازت سے ہٹ کر کوئی بھی حکمرانی زمین میں قائم ہوتی ہے، وہ خدا اسے قبول نہیں کرتا. اور ایسی حکمرانی کے اندر زندگی گزارنا، ایسے حکمران کے نیچے زندگی گزارنے کو خدا پسند نہیں کرتا، کیونکہ خدا کہتا ہے مطلق حاکمیت میری ہے، میں نے کائنات خلق کیا، تم میرے بندے ہو، خدا کے بندے ہیں، نظام بھی خدا کا ہوگا. اگر میں اجازت دوں کسی کو حکمرانی کی تو وہ حکمرانی کر سکتا ہے، اور آپ کو بھی چاہیے کہ پھر اس کی حکمرانی کو ایکسیپٹ کریں کیونکہ وہ میرا نمائندہ ہوگا، لہٰذا اس کی مخالفت کرنا میری مخالفت ہوگی. لیکن اگر اس سے ہٹ کر کسی کی حکمرانی کو آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے، تو پھر یہ آپ اپنے کیے ہوئے عمل کے خود ذمہ دار ہیں. اگر اس کی حکمرانی میرے اصول و ضوابط کے مطابق نہیں ہوگی، تو یقیناً وہ اسے استعمال کیا، ایک لفظ استعمال کیا ہے جو آیت الکرسی جو پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے، وہ طاغوت ہے. طاغوت طغیان سے ہے، سرکشی، بغاوت کرنا، نہ ماننا، ہٹ درمی دکھانا، ظلم و ستم کرنا. طاغوت پھر ایک وسیع معنی میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد وہاں پر کہا وجتنب الطاغوت، طاغوت سے بچو، اجتناب کرو، پرہیز کرو. وجتنب الطاغوت، طاغوت سے ہمیشہ بچے رہنا، इसलिए कि तागूत आपका हुक्मरान नहीं हो सकता। तागूत का निजाम आपके लिए वो निजाम नहीं है जो आपको परफेक्ट कहला सके और आपको कामयाबी दिलाता हो। हो सकता है कि तागूत का निजाम आपके पेट भरने में बड़ा अच्छा रोल प्ले करे, हो सकता है आपकी तन आसानी के लिए आपको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, लेकिन ये खैर नहीं होगी इसके अंदर। तबारक अल्लदी बियदिहिल मुल्क है, खैर व बरकत और अच्छाई। खैर कहते हैं ऐसी चीज को जो जो एंड नहीं रखती, खत्म नहीं होती, कंटिन्यूली चलती है, तसलसुल है जिसके अंदर। ये जो हम कहते हैं ना बरकत नहीं आई, बरकत ना आने का क्या होता है कि हमने काम किया, मेहनत किया और उसका सिला भी हमने पा लिया, लेकिन वो सिला बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम में खत्म हो गया, उसमें कोई हमें वुसअत नजर नहीं आई, कंटिन्यू नहीं चला, वो तसलसुल टूट गया उसका। तो ये इसी से, उसी फैमिली से लगता है, जाहिर इसके मीनिंग्स हैं डिफरेंट, जब यूजेस होते हैं। तो फरमाया कि खैर व बरकत उस सिस्टम के अंदर होगी आपको, और दुनियावी सिर्फ खैर नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली दुनिया को मैंने इसलिए पैदा नहीं किया है कि आपकी सारी जिंदगी यहां गुजरने वाली है और आपके पास जो कुछ है वो यहाँ है, खोया तो भी यहाँ, पाया तो भी यहाँ, ऐसा नहीं किया है मैंने। बहुत से लोग यहाँ खोते हैं जाहिरी तौर पर दुनिया की चीजें, लेकिन असल में वो पा रहे होते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि इस दुनिया के अंदर इंसान बाज बड़े अहदाफ और मकासिद के लिए इस हद तक चला जाता है कि वो अपनी जान भी दे देता है, माल भी दे देता है, औलाद भी दे देता है, जो कीमती तरीन चीजें होती हैं, और खुदा इसको पसंद भी करता है। तो खुदा कहता है तुनफिकुन मिम्मा तुहिब्बुन, वो अच्छे जो मोमिन लोग होते हैं वो जो महबूब चीज होती है उसे इन्फाक करते हैं, उसे राय खुदा में देते हैं। हमारे यहाँ एक कल्चर होता है कि घर में कोई चीज यूज हो रही थी एक टाइम तक, अब वो उसकी जगह में दूसरी चीज आ गई नई अपडेटेड, तो वो कहते हैं मस्जिद में दे दो। ये बिल्कुल कुरान के उसूल के खिलाफ है। कुरान कहता है जो आपकी महबूब है ना वो उसे आप राय खुदा में दे देना। ये नहीं कि मैंने कपड़े पहने हैं, बहुत टाइम इस्तेमाल किया है, अब मैं वो निकाल के फकीर को दे दूं क्योंकि मेरे पास नए आ गए। यानी जाया करने से तो किसी के इस्तेमाल में देना अच्छा है, लेकिन ये इन्फाक आइडियल नहीं है, आला तरीन इन्फाक नहीं है, महबूब इन्फाक नहीं है। अच्छा, एक बात इन्फाक की आई, चले मैं एक मिसाल दे के आगे बढ़ूं। आपके जहन में है ये चीजें, सिर्फ वो कनेक्शन बनाने की बात है। सैदे कायनात की शादी हो रही है, अच्छा एक लड़का और लड़की के कितने अरमान होते हैं, और ये टाइम शादी का टाइम उनके लिए बड़ा यूनिक होता है क्योंकि ये रोज रिपीट होने वाली चीजें तो नहीं है। तो शादी एक बड़ी अरमान वाली चीज होती है, एक ऐसी, बहुत से लोग इसकी एल्बम्स बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, बहुत से लोग आप यकीन करें कर्जों में डूब कर पैसा उड़ाते हैं। हमारे यहाँ तो इतना कल्चर, क्योंकि लो है हमारा, मजहबी कल्चर भी लो है पाकिस्तान इंडिया में, और हमारा दूसरा जो आम कल्चर एक होता है वो भी लो है, हेलीकॉप्टरों से नोटों की बारिश कराना। यूरोप में सारी जिंदगी मजदूरी की, बदतरीन हालात में पैसा कमा लिया, बैंक से लोन भी उठा लिए, दोस्तों से भी पकड़ लिए सिर्फ शो करने के लिए, पाकिस्तान में जाकर शादी की, हेलीकॉप्टरों से पैसों की बारिश कर दी, इसलिए कि अपने होने वाली बेगम से यह वादा किया था कि मैं तुम्हारे ऊपर नोटों की बारिश करूंगा। या एक और साहब थे जिसने अपनी बेगम को सोने में तोला, बाकायदा जब वो बारात आई घर में, दरवाजे पे एक पल्ले पे बेगम साहिबा को बिठा दिया, वो पहले से अच्छे खासे सोने चांदी में लदी हुई थी, उसका भी वेट था, दूसरी तरफ से सोने डालते चले गए, वहां पर सुनार बैठे हुए हैं, वो सोने रख रहे हैं उसके ऊपर, जवाहरात, पत्नी नेकलेस हैं, हार हैं, ईंटें हैं। जब वो वेट बराबर हो गया तो वो सारा जो वेट है, सोना है, वो एक थैले में पैक करके बेगम साहिबा के हवाले कर दिया और बेगम को लेके घर चले गए। एक तरफ ये सूरत हाल है। अब आप देखें कायनात की, और फिर लोग कहते हैं कि हम जो है सैदा के फॉलोअर्स हैं, हम जो है सैदतुन्निसाइल आलमीन के मानने वाले हैं। अब सैदतुन्निसाइल आलमीन एक ही नया जोड़ा है शादी के लिए, जो जोड़ा मौलाए कायनात ने फराहम किया था। जाहिर है वो इकोनॉमिकल हालात भी उस वक्त अच्छे नहीं थे, बिगिनिंग ऑफ इस्लाम में। एक शादी में जाहिर है घर में थोड़ा सा रश है, खवातीन का, एक मोहताज जरूरतमंद खातून आती है, वो आवाज देती है मैं जरूरतमंद हूं, मेरे पास पहनने के कपड़े नहीं, कोई मेरी मदद करे। खवातीन तवज्जो नहीं देती है, जो दुल्हन है वो मुतवज्जे हो जाती है कि भाई खातून कुछ मांग रही है, उसे बुलाती है, लेके जाती है, जो शादी का जोड़ा पहना हुआ था वो नया था, उसे उतारती हैं, पुराने वापस अपने कपड़े पहनती हैं, नया जोड़ा उसे देती हैं। यह है मिम्मा तो है बुदुन फिकून है मिम्मा तो है बून। तो बात निकल गई, तो अर्ज ये करा था खैर व बरकत जो है, जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है वो इसी लफ्ज से, तबारक अल्लदी बिया, आपके हाँ सिस्टम के अंदर बरकत नहीं है, इस मुल्क से बरकत उठ गई है, यहाँ सिस्टम जो भी हाथ डालता है फेलियर है हर जगह पर, इसलिए कि खुदा ने कहा तबारक अल्लदी बियदिहिल मुल्क, निजाम वो बनाओ जिसमें खुदा की रजा शामिल हो, खुदा के कवानीन के मुताबिक हो, सिस्टम आप वो अप्लाई करें सोसाइटी के अंदर, और दूसरी तरफ ये कि उसमें खैर और बरकत भी होगी, क्योंकि खैर बरकत खुदा ने कहा कि ये खैर बरकत ऐसी चीजें नहीं है जो आपको मिलेंगी। हाँ, एक तीसरी चीज इसके अंदर ये है कि खुदा ने कहा निजाम कायनात, कल भी बात हो रही थी, सिस्टम जो है इल्लत व मालूल का, जिसको आप कहते हैं सिस्टम ऑफ कॉजालिटी, कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बुनियाद रखा है मैंने, एक्सेप्शंस रखे हैं, इस्तिस्नाआत मौजूद हैं, लेकिन निजाम इस तरह रखा है, अगर आप अच्छा सिस्टम बनाएंगे, अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो अच्छे रिजल्ट भी पाएंगे, इसका डायरेक्टली आपके ईमान और आपके अकीदे से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक मुसलमान के लिए और एक मोमिन के लिए इसका ताल्लुक बन जाता है जब वो साहेब ईमान बनता है, क्योंकि जो खैर और बरकत वाला अंसुर है इसका तसलसल सिर्फ दुनिया तक नहीं है कि मेरे पास 10 यूरो आए हैं तो वो इतने बरकती बन जाएं कि वो 100 वाला काम करें 1000 वाला काम करें, नहीं, वो 10 यूरो आपको जहन्नम से निजात दिलाने का काम कर सकते हैं, ऐसी बरकत दे सकते हैं, ये बरकत का तसलसल दुनिया से जाके आखरत तक, वो मवाद है आखरत जो मिलियन ट्रिलियन अनलिमिटेड पीरियड है जहां लाइफ हमने गुजारनी है उस तक इसके असरात मौजूद है। अब इंसान कौन सी बरकत चाहेगा, एक अच्छा बिजनेसमैन होगा, खुदा कहता है मैं तुम्हें अनलिमिटेड एक बरकत देता हूं, और एक तरफ कहता है नहीं मुझे 1000 10 का जो है ना 1000 वाला, मन जा अबिल हसन फलहु अशर अमसालिहा, वादा किया आपने कि मैं एक नेकी के बदले में 10 दे दूंगा, तो मुझे वो 10 इधरी दे दे, मल्टीप्लाई करें 10 को 10 से, जो बनता है वो मुझे दे दे, बेवकूफ आदमी होगा जो इस तरह की डील करेगा डेफिनेटली। तो निजाम और सिस्टम के अंदर भी इसी तरह है, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है। वैसे एक बारीक लतीफ सा नुक्ता इधर थोड़ा सा टच करके चला जाऊं, क्योंकि मौजू से बाहर चले जाएंगे अगर ज्यादा छेड़ूंगा इसको, वो ये है कि बाज लोग कहते हैं कि ये आ साहब जो है ना, आप कहते हैं देखें वो कुफार और मुशरिकीन और बेदीन लोग ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, उनके से तो बरकत नहीं उठती, वो तो किसी पकड़ में नहीं आते खुदा की, हम ही लोग आते हैं पकड़ में, इसलिए कि हम लोग खुदा की मारिफत रखते हैं। आयतुल्ला कराती हमारी सदी के बेहतरीन मुफस्सिर हैं और मिसालों के बादशाह कहते हैं उनको, उन्होंने एक खूबसूरत मिसाल दी, कहा कि देखें आप कहें बैठे हुए हों, अगर आपके कपड़े में कोई गंदी चीज अचानक कोई ऐसी टिप कर जाए इधर, तो जाहिर है कि आप एकदम से भागते नहीं है निहाने धोने के लिए उसको कि भाई कपड़ा उतार दो मैं धो लूं, थोड़ा सा लग गया, कहता है चलो घर जाके कर लूंगा, लेकिन अगर यही कोई डब्बा आपके ऐनक में आके गिरे, आप फौरन साफ करते हैं, फौरन उसे साफ करते हैं, कहता है सेम मिसाल है खुदा के नजदीक मोमिन और गैर मोमिन की, बाईमान आदमी जब अपने ईमान के ऊपर धब्बा डालता है तो खुदा पनिश करता है कि फौरन साफ करे उसको इस्तगफार के जरिए से, जब कोई बेईमान आदमी करता है, कोई मुशरिक को काफर करता है, तो खुदा कहता है छोड़ दो इसको, रहने दो इसको, जैसे हजरत ज़ैनब सलाम अलैहा ने भी यजीद को कहा था कुरान की उस आयत की तिलावत करके, कहा इन्नमा नुमली, कहा कि यजीद तुम्हें फुर्सत दे रहा है खुदा, ये फुर्सत को तुम मत समझना कि तुम्हारी कामयाबी हो रही है, खुदा ढील दे रहा है तुम्हें ताकि तुम और जराइम करते चले जाओ, यहां तक कि तुम किसी तौबा के मुस्तहक करार ना पाओ, यहां तक कि तुम्हें तौबा की तौफीक तक खत्म हो जाए तुम्हारी, यानी कोई चीज ना रहे बाकी, कि इतनी बड़ी वसी रहमत है खुदा के तुम किसी भी गोशे का हकदार ना ठहराए जाओ। इसलिए कहा कि खुदा तुम्हें दील दे रहा है असल में। तो ये जो है चीजें हैं जिसकी तरफ तवज्जो हमें जरूरत है कि तवज्जो दी जाए। खुदा इस आयत के अंदर फरमाता है कि तबारक अल्लदी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, खुदा कादिर है हर चीज के ऊपर। बनिनो इंसान के लिए खुदा ने कोई ऐसी एम्प्टी जगह नहीं रखी है कि जिसको उन्होंने खुद फील करना है। ऐसा नहीं है कि खुदा के पास सिस्टम में कोई ऐसी कमी आई थी कि उस कमी को हम मुख्तलिफ इजम्स के जरिए से खुद से बनाने शुरू कर दें और बनाकर कहें नहीं जी खुदा के निजाम में तो डेमोक्रेटिक कोई तरीक़ेकार नहीं है तो हम उसे अडॉप्ट करते हैं। खुदा के निजाम में फर्ज करें कि ह्यूमन परस्ती या ह्यूमनिज्म या इंसान परस्ती नहीं है तो हम उसे ऐड करते हैं। खुदा के निजाम में मेटेरियलिज्म नहीं है, हम उसे ऐड करते हैं। खुदा के निजाम में सेक्युलरिज्म नहीं है, हम उसे ऐड करते हैं। खुदा के सिस्टम में क्योंकि लिबरलिज्म की जगह खाली थी, हम उसे ऐड करते हैं। खुदा ने ऐसा सिस्टम नहीं दिया जो नाकिस हो, जिसे हमें अपनी तरफ से कुछ डालना पड़े। टाइम टू टाइम इस सिस्टम के अंदर ऐसी खासियत है कि टाइम के साथ ये सिस्टम अपग्रेड होता है खुद ब खुद। असल में होता क्या है कि ये सिस्टम एक पूरे ओशियन की तरह है। आज मेरी जरूरत, मेरी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट इस ओशन में से फर्ज करें कि चंद हजार मुकब जो है पानी की जरूरत है मुझे, तो बस मैंने इतना ही लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि ओशन खुश्क हो गया और खत्म हो गया है, मुझे किसी और तरफ रुख करना पड़ेगा। खुदा का निजाम इस तरह है। दीन की खासियत ही यही है। दीन क्यों हमेशा तरोताजा रहता है? खुदा का निजाम हमेशा तरोताजा क्यों रहता है, फ्रेश रहता है, एक्सपायरी डेट नहीं रखता? उसकी वजह है कि ये हर जमाने के लिए सूट करता है। मीनिंग्स ये है, हर जमाने के लिए सूट करता है, हर जमाने की रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। जो भी जमाना आएगा उसकी रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर होंगी, क्योंकि एक ओशन की तरह है। हर जमाने वालों ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से समझना शुरू किया है और लेना शुरू किया है और उसको इससे इस्तेफादा किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस क्योंकि वो जमाने वाले कर रहे थे अब जमाना आगे चला गया है तो लिहाजा वो चीजें तो अब पुरानी हो गई तो अब यहां पर भी कुछ नहीं है, खाली हो गया, ऐसा नहीं है, हमेशा मौजूद है। कलाम मासूम और कलाम अल्लाह की यही खासियत है। क्यों हदीस हर वक्त ताजा है, क्यों कुरान की आयत हर वक्त फ्रेश है, एक्सपायरी डेट नहीं रखती है? उसके पीछे वन ऑफ द जो रीजन है वो ये रीजन है। इसलिए जब मुख्तलिफ दुनिया के अंदर सिस्टम आने लग जाते हैं, सोशल सिस्टम आता है, वेलफेयर सिस्टम आता है, आपकी इकोनॉमिकल सिस्टम आता है, पॉलिटिकल सिस्टम आता है, तो उस सिस्टम के लिए जवाब हमारा ये होता है कि आखिर कौन सी चीज एक्सपायर हो गई है जिसके अल्टीमेटली आप चाह रहे हैं कि एक अल्टरनेटिव, एक और सिस्टम नाफिज किया जाए। सेकुलरिज्म उठी है यहां पर यूरोप के अंदर। कल मैंने अर्ज किया था सेकुलर तसव्वुर कैसे उभरा। सेकुलर तसव्वुर ऐसे उभरा कि यहाँ जो पापाइत थी, दीन यानी खुदा और वही और पैगंबर के नाम पर जो मजहब यहाँ पर हुक्मरानी करता था और उनका कंट्रोल था सोसाइटी के अंदर, सिस्टम भी उन्होंने, उनका दावा था, ये क्लेम करते थे कि जो सिस्टम है वो बाइबल के मुताबिक है, यानी खुदा का निजाम है। लिहाजा लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था, क्योंकि न वो किताब वो थी, किताब में तहरीफ हो चुकी थी, तालीमात भी वो तालीमात नहीं थी, और जो अंडरस्टैंड करने वाले उलमा ए कराम थे वो भी उससे जो है कोई खातिर खा अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इंसानी सोच को खुदा का निजाम बनाकर पेश किया, उसके साइड इफेक्ट निकलना शुरू हो गए, ना कि बल्कि पूरे ब्लेंडर्स होने लग गए सोसाइटी के अंदर। लोग तंग आ गए उस निजाम से, मतलब साइंटिस्ट की मुखालिफत की, साइंस की तरक्की की मुखालिफत करना शुरू कर दिया। साइंटिस्ट जो रिसर्च करके जो इजादात करते थे, तो जो अंगेजेसियून फ्रेंच लफ्ज है यानी तफ्तीश अकायद करने वाली कमेटी के सामने आना पड़ता था उनको, और जो एक कमेटी बैठी हुई होती थी वो अकीदों की तफ्तीश करती थी। हाँ जी बताओ तो सही साइंटिस्ट साहब, आप क्या डिस्कवर करके आए हैं? जिनाब मैंने डिस्कवर कर लिया है कि जमीन गर्दिश कर रही है, जनाब मैंने डिस्कवर कर दिया है कि फला जगह पर ये जो है ऐसे करने से ये हो जाता है। वो कहते थे नहीं, ये हजरत ईसा की तालीमात के खिलाफ हैं, तुम्हें तोबा करना होगा और अपनी इस रिसर्च को वापस लेना होगा, वगरना फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट भी आग की भट्टियों में जला देना, जिंदा आंखों में सलाखें डालना। आप अगर ये जो बातें मुझसे सुन रहे हैं, अगर डीपली पढ़ना चाहते हैं, तो कल भी मैंने इस किताब का हवाला दिया था, वेल ड्यूरांट की आप किताब है हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, उसको आप जाके इस चैप्टर को पढ़ें जो डार्क एजिस का चैप्टर है, जिसको कर्ण वुस्ता कुरून वुस्ता बोलते हैं ये लोग, जिसको ये लोग वैसे मिडिल एजिस कहते हैं, मिडिल तो नहीं, वो डार्क एजिस है, वो डार्क एजिस के उस पीरियड को देखें, तो उसके अल्टीमेटली क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस शुरू हो गई। और उन्होंने कहा यार प्रॉब्लम हमारी कहाँ पर है सोसाइटी में, अगर तरक्की नहीं हो रही है, साइंस में तरक्की नहीं कर पा रहे, उलूम में तरक्की नहीं कर पा रहे, इंसानी सोच पनप नहीं रही है, इंसानी अकल काम नहीं कर पा रहा, अकल को फ्रीज कर दिया है चर्च ने। चर्च कहता है तुम सोच नहीं सकते, थिंकिंग नहीं कर सकते। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम दुनिया में भी ये सोच आई, अभी भी है, जो हमारे सलफिस्ट या वहाबी सोच है, मेंटालिटी है, वो कहते हैं आप हदीस की किताब नहीं पढ़ सकते, आप कुरान को समझने की खुद कोशिश नहीं कर सकते। कुरान कहता है मुझे समझने की कोशिश करो, और क्रिटिसाइज करता है कुरान, कहता है कि ये लोग अकल नहीं रखते हैं, मेरी आयात पे गौर क्यों नहीं करते हैं। और ये कुछ कैटेगरी निकली जो कहती है जी तुम हदीस नहीं पढ़ोगे, तुम हदीस की जो मशहूर किताबें हैं सिहाए सित्ता, उसका मुतालिया नहीं कर सकते वगैरह। अब खैर आजकल तो चीजें किसी के कंट्रोल में नहीं रही हैं, कम्युनिकेशन उसकी वजह से और जदीद जो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट और इन चीजों की वजह से चीजें अब छुपती भी नहीं है, तो ना छुपाई जा सकती हैं, ये मेंटालिटी और ये सोच रही है। फिर दूसरा बड़ा मसला ये है कि आप अगर मजहबी अकीदे के खिलाफ कोई रिसर्च आती है सामने, तो आप फौरन वो फतवे जारी करें जो कम बेश इस वक्त हमारे गली कोचों में आज हो रहा है। मॉब पूरा आता है, अटैक करता है, एक अफवाह के वजह से फौरन जो है कानून माशरती नज्म व नस्क अपने हाथ में लेता है, और खुद जज बनता है, खुद ही फैसला करता है, खुद ही उसे पनिश भी करता है, विदाउट एनी यानी तमाम जो एक शरी उसूल और पैरामीटर्स दिए हैं किसी भी मुजरिम को के जुर्म को साबित करने के, उसको देखे बगैर। अभी रिसेंटली जो हुआ हमारी माइनॉरिटीज के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, वो यही सोच है, ये सोच यहाँ थी पापाइत में, वो नहीं तलाश करते थे इन चीजों को ज्यादा, यानी बैंड था, आप अकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहां आपने थोड़ी सी कोई थॉट प्रोसेस वाला काम किया, थोड़ी सी अकल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आगे से जो तफ्तीश अकायद की कमेटी है, वो तफ्तीश अकायद की कमेटी आएगी, आपको पकड़ेगी और आपको पनिश करना शुरू कर देगी। हाँ जी, तुमने ये फलसफी सोच कहाँ से लिया, तुमने सुकरात से उठाया है, तुमने बुकरात से उठाया, तुमने अरिस्टाटेस से लिया है, तुम प्लूटो से लेते हो। ये एक अजीब व गरीब माहौल बनाया हुआ था इन्होंने, खौफ का, डर का, यानी आदमी सोचे नहीं, आदमी कुछ करने की असल जो नेचुरल उसके अंदर खुदा दादी जो एक उमंग अंदर जागी हुई होती है उसके अंदर, उसको दबाता रहे, और उसके बाद फिर और चीजों की तरफ आ गए, क्योंकि खुद जो चर्च थे वो जिनसी उसको इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते थे, और खुद जो है तजर्रुद की जिंदगी और बगैर शादी के रहने को ज्यादा मुकद्दस समझते थे हजरत ईसा से, वो करके बिगड़ी हुई तालीमात के जरिए से अभी भी ये सोच मौजूद है, तो मेल फीमेल के रिलेशंस को लेकर सेंसिटिविटी मौजूद थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा किस्म की, यानी गैर जरूरी। और ये सेंसिटिविटी हमारे माशरू में भी, इस मुस्लिम दुनिया के अंदर भी है। आप तालिबान की जो, ये तो तालिबान 1.5 है ना, अपडेटेड अपग्रेडेड तालिबान है, तो इनकी तो कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, जो शुरू में हुकूमत आई थी तालिबान की, आप लोग जरा जाके हिस्ट्री पढ़े तालिबान की ना, उन्होंने घोड़ों और कच्चों को, उसको घोड़ों और खच्चर और गधों को कच्चे पहनाने शुरू कर दिए, क्योंकि ये जाहिर गोदा घोड़ा गाड़ी गधा गाड़ी बाजार में आती है तो वो जो है बेहयाई होती है, इससे अजीब है, रसूल के जमाने में कोई कच्चा पहनाने का हुक्म नहीं आया, कोई हदीस तो नहीं है हमारे पास ऐसी। क्या था असल में, कबाइली जो ऐनक होती है, कबाइली जो रसूमात हैं, उससे आपने हदीस और आयत को तफसीर करना शुरू कर दिया। ये प्रॉब्लम हमारे पास भी रही है, स्टिल है, औरत को लेकर एक्स्ट्रा किस्म की एक सेंसिटिविटी मौजूद है, जो नेचुरल खुदा दादी हक है एक खातून का, उसे भी मार दिया जाता है, बाज़ औकात हया के नाम पर, बाज़ औकात गैरत के नाम पर, बाज़ औकात किसी और नाम पर, स्टिल ये है अभी भी, यूरोप के अंदर मोर देन यानी हर साल एक दो केसेस आते हैं, और मोस्टली ये केसेस हमारे पाकिस्तानी माशरे के होते हैं कि जिसमें माँ और बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी लाश दबा दी, पूरा यूरोप उठा हुआ है, या उसको धोखे से पाकिस्तान लेके गए, वहां पकड़ के उसको बंद कर दिया, हमसे भेजा में रखा, वो एम्बेसी से कांटेक्ट कर छोड़, क्यों? गैरत के नाम पर, क्योंकि लड़की फलां लड़के से शादी कर रही है और हम इसके अगेंस्ट हैं। ये जो मेंटालिटीज हैं, ये तो इक्का दुक्का वाकयात है ना हमारे पास, वो भी मजहब ने तो नहीं कहा है हमारे कि करो, लोगों की अपनी सकाफत है, सोच है, लो कल्चर होने की वजह से है, एजुकेशन ना होने की वजह से है, ये लोगों के अपने बनाए हुए चीजें हैं। हमारे दीन ने ये हुक्म नहीं दिए हैं, हमारे दीन ने ये सब कुछ नहीं कहा। अब उस दौर में पूरी सोसाइटी के अंदर एक कानून हुक्मरान है, वो इस तरह का कानून है, और उससे ज्यादा बदतर कानून। अब रेजिस्टेंस तो पैदा होगी, जब रेजिस्टेंस पैदा हो गई तो क्या हुआ, कहा कि देखो भाई, पॉलिटिकल जो सिस्टम है ना, उसको उसके अंदर दीन को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, हुक्मरानी में, हुक्मरानी वाले निजाम में दीन नहीं आएगा, क्योंकि दीन जब आता है तासुबात आते हैं, दीन आता है उसकी अपनी सोच आती है, जिसके अंदर तासुब है, जो तरक्की के लिए रुकावट है, जो उलूम में पेशरफ्त और तरक्की और उसके उसकी जो है रिसर्च के आगे रुकावट के तौर पर खड़ा होता है। लिहाजा हम दीन को तो बिल्कुल भी, आप ऐसा करें ना, दीन को बिल्कुल ही साइड पे कर दें, एटलीस्ट ये करें सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम से दीन को बाहर कर दें। अब चर्चों में जो करना चाहें करते रहें, गुरुद्वारों में करते रहें, इबादत गाहों में करते रहें, बाउंड्रीज के अंदर आप करते रहें, लेकिन दीन आपकी सोसाइटी में नहीं आएगी। दीन रियासत का कोई दीन नहीं होगा, सियासत का कोई दीन नहीं होगा, रियासत का कोई दीन नहीं होगा। ये फार्मूला बना, मसलन एक जो लफ्ज आया, कहा जी रियासत और समाज दोनों सेक्युलर होंगे, दीन सिर्फ या जो है मजहब, और सिर्फ फर्दी मामलात में, जाती हैसियत में किसी का कोई दीन है वो हमें कोई लेना देना नहीं, रियासत सबको एक्सेप्ट करती है। इसके अंदर से एक नई थ्योरी भी सामने आ गई जो शब्द और मत के साथ बहुत ज्यादा चलाई भी जाती है, वो है पोलराइजेशन। यानी पोलराइजेशन के मुख्तलिफ डिफिनेशंस हैं, उसकी जो एक्चुअल जिस थ्योरी को बेस करके ये नजरिया सामने आया था वो ये था, भाई आपका दीन भी कबूल है, आपका दीन भी कबूल है, आपका दीन भी कबूल है। कबूल है तो चलो एक हद तक ठीक है, रिलीजियस हार्मनी वगैरह वगैरह ठीक है उस हद तक। वो कहते नहीं, आपका दीन भी सही है, आपका दीन भी सही है, आपका दीन भी सही है। जो कहता है नहीं है कोई खुदा सिवाय एक खुदा वाहिद के, वो भी सही। जो कहता है कि मेरे हर मसले के लिए एक खुदा है, वो भी सही। जो कहता है मैंने अपने हाथों से जो चीज तराशी और बनाई थी, अब वो मेरा खुदा है, वो भी सही। जो कहता है पूरी कायनात का एक ही खुदा है, वाहिद और कहार है, जिसका कोई जिस्म नहीं, न उसे ओंक आती है, न मौत का कोई तसव्वुर वहां पर है, न वो किसी से पैदा हुआ है, न उसी से कोई पैदा हुआ है, वो भी सही। ये पोलराइजेशन का, आप भी सही, आप भी सही, आप भी सही, यानी सारे, कहा जी सारे दिन से पोलराइजेशन। और भी आए बहुत सारे नजरियात आए, फिर ये क्वेश्चंस खड़े हो गए कि आखिर ये दीन आया कहां से है, यानी सवाल उठाया कि भाई ये दीन आया किधर से, क्योंकि वो इस बात को मानने के लिए तो तैयार नहीं है कि कोई खुदा है जिसके ने नबी भेजे, उसने किताब भेजी, और हजरत ईसा नबी का भेजा हुआ, खुदा का भेजा हुआ पैगंबर है, उसके साथ बाइबल नाम की किताब आई है वगैरह, ये तो आप एक्सेप्ट करने के तैयार, इसको तो कहते हैं झूठ है, ये तो असातीरुल अव्वलीन है, कुरान जिसको कोट करता है, इन्ना असातीरुल अव्वलीन, पुराने लोगों की कहानियां हैं। अब वो ढूंढते हैं यार ये दीन का नजरिया उठा कहां से, कौन सा दानिश्वर था जिसने ये थ्योरी पेश की, क्योंकि इंसान की जो असास है, जो ओरिजिन है, जो बेस्ड है, जो हिस्ट्री है, वो तो एवोल्यूशनरी थ्योरी के ऊपर बेस कर दिया है ना, कि हम आए किधर से, हजरत आदम से आए वाली बात तो खत्म हो गई है, अब आ गई जनाब हम तो एवोल्यूशनरी थ्योरी की पैदावार हैं, हम तो पहले एनिमल्स थे, एनिमल्स से आस्ता आस्ता हम इधर आए हैं, डार्विन ने जो थ्योरी पेश की उसको एक्सेप्ट किया गया, अब हमें ढूंढना है कि इस इंसान ने ये दीन का जो तसव्वुर है ये पैदा कैसे किया। बहुत सारे तसव्वुरात पैदा होते हैं, मसलन कम्युनिज्म कैसे पैदा हुआ जी, सोशलिज्म कैसे पैदा हुआ जी, कैपिटलिज्म कैसे पैदा हुआ जी, कैपिटल यानी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम है, ये कहां से पैदा हुआ जी? डेमोक्रेसी का तस्वुर कहां से जागा जी? डिक्टेटरशिप का को बुरा समझना कब से शुरू किया? बादशाहतों के खात्मे के असबाब क्या हैं? तो उसमें से ढूंढते ढूंढते मुख्तलिफ सारे फनामनाज हैं सोसाइटी के अंदर, उनका वन ऑफ देम इज रिलीजन। रिलीजन आया कहां से? इतनी सारी थ्योरीज मिलेंगी। मैं अगर सही वो याद हो मुझे तो कम से कम 2 से 3 दर्जन थ्योरीज होंगी। हर थिंकर अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से एक आइडिया दे रहा है कि दीन ऐसे आया। ये सब क्या है? ये गेस कर रहे हैं, देयर इज नो एविडेंस। ऐसा नहीं है कि डायनासोर्स के हमें कुछ ऐसे ढांचे मिले हैं कि हमने पता चला कि पुराने जमाने में एक मखलूक होती थी जिसका प्रूफ है हमारे पास। बहुत सारे और ऐसे फिनोमेनास हैं और ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमारे पास सबूत मौजूद है, लेकिन दीन के बारे में उनके पास कोई सबूत नहीं है तारीखी तौर पर। तो इन्होंने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। मसलन इसमें सबसे खतरनाक जो नजरिया पेश किया जिसकी वजह से इखलाकी गिरावट शुरू हो गई यहाँ यूरोप में, बावजूद उसके कि दीन को चर्च में डाल दिया था इन्होंने, सोसाइटी से रियासत और सियासत से मजहब को साइड पे कर दिया, उसके बावजूद यहाँ पर कुछ मॉरल एथिक्स और वैल्यूज मौजूद थे इस सोसाइटी के अंदर, लेकिन उसको उस वक्त जवाल आना शुरू हो गया जब जेगमेंट फ्रॉयड ने ये नजरिया पेश किया कि दीन, क्योंकि वो एक साइकाट्रिस्ट था, कहा जी कि दीन दर हकीकत कैसे पैदा हुआ पता है क्या है? जिनसी ख्वाहिश के आगे रुकावट खड़े खड़ा करने का नतीजा दीन की शक्ल में आया है। क्यों भाई? एनालाइज करो जरा, आप क्या कहना चाहते हो? असल में कि बात यह है, क्योंकि चर्च ने दबाव डाला जिनसी ख्वाहिश को जो इंसान के अंदर कुदरती है उसके आगे रुकावटें खड़ी कर दी, और इसको एक नामुकद्दस बेहयाई वाले कंसेप्ट के साथ ताबीर किया, और फिर कहा कि अगर तुम जो है ना ऐसे गैर शरी तरीके से ये करोगे तो खुदा नाराज हो जाएगा, तुम्हें अजाब में डालेगा। का यहां से कहा खुदा का एक तस्वुर बना लिया उन्होंने, जन्नत जहन्नम का कंसेप्ट बना दिया। यहां से उन्होंने सारा जो है फरिश्ते और कबर और हयात बाद अज मौत यानी लाइफ आफ्टर डेथ का कंसेप्ट, ये सारी यहां से निकल। जिगमंड फ्रॉयड जैसा बंदा कह रहा है। और भी बहुत सारे, कभी मसलन जो हमारे सोशलिस्ट या जो कम्युनिस्ट है उन्होंने थ्योरी पेश कर दी। असल में पता है क्या है? सरमायादार जो कैपिटलिस्ट हैं उन्होंने गरीब तबके को दबा के रखने के लिए दीन बनाया है। इसलिए कार्ल मार्क्स कहता था दीन एक ड्रग है, एक खतरनाक किस्म का ड्रग है, अफ्यून की तरह है। ये दीन जिसके पास आता तो नशे में मस्त हो जाता है, उसकी सोशल हर मोमेंट खत्म हो जाती है। क्यों? इसलिए कि सरमायादारों ने ये ड्रग फैलाया है सोसाइटी के अंदर अपने कब्जे और तसल्लुत को बाकी रखने के लिए। अजीब है, मुकाबले में जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो कम्युनिज्म को बदनाम कर रहे हैं, उसके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। नहीं, ये तो कम्युनिस्टों का बनाया हुआ है, ताकि गरीब तबके को इस दीन के जरिए से वरगला कर उठाएं, हमारे खिलाफ मूवमेंट बनाएं इसके जरिए से। आप कार्ल मार्क्स की किताबें उठा के देख लें, और या कैपिटलिस्ट जो थ्योरीज आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाले आज से 100 साल पहले, 80 साल पहले, 70 साल पहले की अभी भी रिसेंटली भी आ रही है, देखें तो आपको यही चीजें मिलेंगी। अब बस सेकुलरिज्म जो है वो दरहकीकत एक छोटा सा नजरिया नहीं है, इसके पीछे कई चीजें, हिस्ट्री है, कई चीजों के साथ रिलेटेड है ये नजरिया। इसलिए कहता है रियासत और सियासत का कोई मजहब नहीं होता। अब आप देखें सूरत हाल इतनी हो गई है कि इजीली बहुत आसानी के साथ हमारी सोसाइटी में जो मुस्लिम सोसाइटीज हैं उसके अंदर भी खुल के कहते हैं जी रियासत का तो कोई मजहब नहीं होता है जी। ईरान में, तुर्की में ऐसे लोग आए जिन्होंने मुस्लिम दुनिया के अंदर ये नजरियात लेके आए, लिबरलिस्ट कम्युनिस्ट। एक और इससे ज्यादा खतरनाक है वो लाइज्म है, या लाइकिज्म जिसको कहते हैं, दोनों सूरतों में पढ़ा जाता है, लाइज्म और लाइकिज्म, बेदीनी। सेक्युलर कहते हैं हम दीन मुखालिफ नहीं है, लेकिन हम कहते हैं रियासत और सियासत में दीन की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। फिर कहते हैं जी एक रियासत जो है ना वो सबके लिए होती है, उसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, इथियस्ट भी है, उसमें सारे मजाहिब के लोग हैं जी। अगर आप रियासत का एक दीन बनाएंगे तो फिर ये होगा कि कौन सा दीन बनाएंगे?
कैसे बनाएंगे जी, फिर यहां से तो मजहबी तासुब शुरू हो जाएगा, नहीं वहां यहाँ पे तो मसाइल खड़े हो जाएंगे। मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे हैं जिसके जरिए से क्या करते हैं, कहते हैं जी रियासत और सियासत का कोई दिन नहीं होना चाहिए, रियासत माँ की तरह होती, इतने खूबसूरत खूबसूरत जुमले होते हैं, एक नॉर्मल आदमी तो कहता है यार बिल्कुल सही कहते हैं। खासकर पाकिस्तानी जैसी सोसाइटी हो जहां मॉब लिंचिंग का इशू बहुत ज्यादा है, बस छोटा सा एक फुलझड़ी छोड़ने की जरूरत है कि एक मॉब उठेगा, बेवकूफों की तैदाद में कोई कमी नहीं है, एक ग्रुप उठेगा और अपना वो कार्रवाई पूरी कर देगा, करके बैठ जाएगा। वहां पर फिर क्या है, कोई भी आदमी समझदार होगा वो कहेगा यार वाकई रियासत का को कोई मजहब होना ही नहीं चाहिए, न सियासत में किसी मजहब को आना चाहिए, क्योंकि अगर इन लोगों के हाथ में पावर आ गई ये तो तबाही फैलाएंगे इधर। जो लोग उस मॉब के अंदर होते हैं, इससे पहले जो एक श्रीलंकन उसके साथ किया, अभी रिसेंटली क्रिश्चियन के साथ, इससे पहले भी कई वाकयात हुए ना, एक दो वाकयात तो नहीं हुए हैं। अगर फर्ज करें इन लोगों के हाथ में रियासत और सियासत दोनों आ जाए, पावर आ जाए, क्या अल्टीमेट रिजल्ट निकलेगा, कुछ तसव्वुर भी करता है ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे उसके, कहेंगे नहीं 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 इससे तो बेदीन रियासत ही हमें चाहिए, इससे तो बेदीन सियासत ही चाहिए, हुक्मरान हमें बेदीन चाहिए, आईन भी बेदीन चाहिए। वो सेकुलर ठीक है, बल्कि उससे आगे लाभ लिबरल लेके आए हैं जी हमारे पास, एंटी रिलीजियस। सेकुलर तो कहते हैं ना हम एंटी नहीं है, हकीकत में एंटी है वो, लिबरल कहते हैं हम एंटी रिलीजियस। सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म जो डिफरेंसेस हैं उनमें से वन ऑफ द डिफरेंसेस इज ये है। हालांकि सेकुलरिज्म एक और, इनके अंदर सेकुलरिज्म के अंदर एक थ्योरी है, वो है सेकुलराइजेशन, किसी सोसाइटी को सेकुलराइज करना। आप उसको जाके उठा के पढ़ लें जरा, तो सेकुलराइज सोसाइटी का मतलब क्या है वो उसी के अंदर यही आएगा। बस ये डिफिनेशन दे रहे हैं सेकुलराइजेशन के बारे में, कहते हैं मैंने ये गालिबन जो है उससे उठाया है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से, जिसमें कहते हैं एक ऐसे अमल की निशानदेही करता है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता समाजी अमल यानी सोशल प्रोसेस को और समाजी इदारे जो सोशल इंस्टीट्यूशनल होते हैं उनको, वो खुद को मजहब और माफोकुल फितरत तसव्वुरात की हुक्मरानी से दूर करते हैं, यानी रिलीजियस एंड क्या क्या वो जो सुपरमेंटल या स्पिरिचुअल जो कंसेप्ट्स हैं माफोकुल फितरत, उससे खुद को दूर करते हैं और अलग और अलाहिदा करते हैं। ये जो है सेकुलराइज किसी सोसाइटी को अगर कहा जाएगा तो उसके अंदर ये एलिमेंट्स और ये खासियतें और उसकी जो है ये पहचान है कि वहां पर कोई भी गैर मादी तसव्वुर नहीं है, यानी अल्लदीन यूमिनून बिलगैब वहां हो ही नहीं सकता उस सोसाइटी के अंदर, उस सोसाइटी के तमाम लोगों को, क्योंकि एक सोसाइटी बनती है कुछ लोगों के इकाइयों से ना, कहता ना कि सोसाइटी की इकाई एक जो होता है वो एक फर्द होता है, फर्द सोसाइटी की इकाई होती है, उसे सोसाइटी बनती है। कहते वहां पर क्या है जी, कहेंगे कोई भी इकाई गैब पर ईमान नहीं रख सकती है, जो कुरान कहता है अल्लदीन यूमिनून बिलगैब, गैब पर ईमान नहीं रखेगी, ये उनकी वो है। अगर हम बारीकी से परखें इसको तो इसके अंदर से जो चीज हमें बरामद होती है वो दो मेन पॉइंट्स इसके अंदर सामने आते हैं। नंबर एक, कभी भी मजहब की बुनियाद पर किसी हुकूमत को और रियासत को वो कबूल नहीं करेंगे। एक, दीन को सिर्फ सियासत और रियासत से नहीं, सोसाइटी से दीन को रिमूव करने और हटाने का मतलब पता क्या है, समाजियात आपकी सोशल लाइफ, तालीम तरबियत आपकी इकोनॉमी, हर जगह से दीन को रिमूव करना चाहेंगे। अच्छा, हम जिन सोसाइटीज में रहते हैं ये सेक्युलर को कहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर और रियासत के ऊपर कहते हैं जी हम सेक्युलर हैं। इसके अंदर आप देखें यहाँ पर दीन के लिए गुंजाइश नहीं है। हाँ फिलहाल अभी बाज मुल्कों में जाती हैसियत में आपको चार दीवारी के अंदर दीन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है आप दीनदार हैं आपके घर में तो कुछ भी कर दे रहे हैं, जैसे कि कोई ये इस तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे एक आदमी कहता है मैं जाती तौर पर जो है ना मेरे जो नजरियात है वो अभी भी मैं हिटलर का लवर हूँ, मैं हिटलर को फॉलो करता हूँ। कहते हैं ठीक है, जाती हैसियत में अपने घर में तुम फॉलो करते रहना, घर के अंदर तुम हिटलर की सुबह शाम तकरीरें सुनता रहना, हमें कोई गरज नहीं है, लेकिन अगर तुम इसको लेकर आओगे ना हमारी सोसाइटी में घुसेड़ने की कोशिश करोगे हमें एक्सेप्ट नहीं है। इसी तरह वो कहते हैं ठीक है, घर के अंदर तुम जो है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले,
हाँ।
वहां पर आप मजहबी रहें, फॉलोअर ऑफ प्रॉफिट रहें, हमें डजन मैटर जी, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। यानी वो सिर्फ मजहब को लेकर ये नजर उनका बिहेवियर नहीं है, बहुत सारी चीजों के ऊपर है। कौन आदमी प्राइवेट लाइफ में क्या करता है, डजन मैटर रियासत के लिए, स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये तो एक अजब मुअत्तल कर दिया ना। खुदा आप चार दीवारी में रखें, फरिश्तों को चार दीवारी में रखें, लाइफ आफ्टर डेथ के कॉन्सेप्ट चार दीवारी में डाल दें आप। आपके पास मुकद्दसात हैं, चार दीवारी में डालें। हमारे पास मुकद्दसात वो हैं जो हमारी रियासत डिफाइन करेगी। इसलिए अगर आप जो है हमारे किसी ऑफिस पर अवाम हमला करती है, तो वो ऑफिस की दीवारें इतनी मुकद्दस हैं कि उन्हें आर्मी कोड में पनिश मिलेगी। लेकिन उस हमला करते वक्त बंदे इंसान मारा जाए तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं है उस इंसान की। उसकी तो कोई उठा के जो है ना किसी कोर्ट में आदलाना और इंसाफ पर मबनी कोई ट्रायल भी नहीं होगा उसका। उसके जिसने हमारी दीवार पर हाथ लगाया है रियासत के किसी जो है इदारे की, उसका तो राइट ही खत्म हो गया। वह एज ए ह्यूमन जो राइट्स हैं वो भी नहीं रहे उसके। उसको तो हम पावर यूज करेंगे, उसकी गर्दन पे हम इस तरह पाउंड लगाएंगे कि वो हिल नहीं सकेगा। ये इसके बिहाइंड द सीन क्या है, कई और मल्टीपल चीजें इसके साथ ऐड होती हैं। वन ऑफ देम इज ये, कैसे चैलेंज करने की तुमने जुरत की। सेम बिहेवियर यहां पर है। अब आते हैं जरा तेजी के साथ, मजहबी या दीनी हुकूमत क्या है, और वाकई क्या मजहब ने अपनी बेस के ऊपर, खुदा ने हमें किसी रियासत की तश्कील के बारे में बात की है, और क्या जो है ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम हमारे पास है या नहीं है। क्योंकि मुसलमानों के अंदर इसको लेकर इतनी सारी चीजें हैं कि आदमी अगर जब इस मौजू के अंदर थोड़ा नया आदमी हो और अंदर घुसना चाहे, तो वो तो एक जाल में फंसा हुआ खुद को महसूस करता है, और उसे वो सिरा नहीं मिलता कि कहाँ से उसने उस जाल को खोलना है। जैसे जाल में फंसता है नजरियात और ख्यालात और उसका, तो हम इसलिए तेजी के साथ बढ़ते हैं और बगैर किसी उसके, देखिए मजहबी हुकूमत के असल में जो बेसिक अज्जा हैं, कंपाउंड्स जिसको आप कहते हैं, वो दो हैं। नंबर एक हुकूमत, यानी हुकूमत की डिफिनेशन क्या की जाती है, भाई हुकूमत है क्या, इसकी तारीफ क्या है। एक मरबूत कयादत, एक ऐसी लीडरशिप जो कि मरबूत है, जो माशरे की मैक्रो सतह पर बिल्कुल ही निचले लेवल पर क्या है, कमांड देती है, ऑर्डर करती है, हुक्म देती है, किसी चीज से रोकती है, मना करती है, और एक कंट्रोल ताकत का इस्तेमाल करती है, पावर को एक्सरसाइज करती है कंट्रोल सतह पर। या दूसरे अल्फाज में कहते हैं, ये कोलंबिया इंसाइक्लोपीडिया ने जो तारीफ की है, मैं उसे भी साथ बयान करूं ताकि इंसाफ से काम चल जाए। कहते समाजी कंट्रोल का एक ऐसा निजाम जिसके तहत कानून बनाने का हक यानी हुकूमत को है, उसको नाफिज करने का हक हुकूमत को है, माशरे के एक मखसूस गुरोह को दिया जाता है, यानी वही जो हुक्मरान तबका होता है। ये कोलंबिया इंसाइक्लोपीडिया ने किया है, ए सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल अंडर विच इज द राइट टू मेक ए लॉ एंड द राइट टू इन्फोर्स देम वगैरह वगैरह। अब आते हैं दीन क्या है, भाई दीन या मजहब क्या है। मजहब अकाइद, अखलाक, कवानीन और जाबितों का एक मजमुआ है जो लोगों के जाती, गौर करें यार बहुत अहम है, लोगों के जाती समाजी मामलात को मुनज्जम करने और दुनिया व आखरत में, सिर्फ दुनिया में नहीं, दुनिया व आखरत में उसकी सआदत को यकीनी बनाने के लिए खुदा की तरफ से मुरतब या डिजाइन किया गया है। ये मजहब की तारीफ है। अब यहां पर दीन कहता है कि जब तक कंट्रोल और पावर और हुक्मरानी का निजाम दीन के पास नहीं होगा, वो तमाम दीन को सोसाइटी में नाफिज नहीं कर सकता, और हर आदमी को सोसाइटी की एक एक इकाई को सआदत दुनियावी व उखरवी दिला नहीं सकता है। यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि दीन क्या करे, सोसाइटी के कंट्रोल किसी और के हाथ में दे, जो एंटी रिलीजियस भी हो, सिस्टम भी एंटी रिलीजियस बनाए, और एट द सेम टाइम दीन को, दीन कहे अच्छा ठीक है सिस्टम वो चला रहे हैं ना, मैं दीनी काम करूंगा आपको दुनिया व आखरत की सआदत दिलाऊंगा। कहता ये नहीं हो सकता है, दीन कहता है भाई ये नहीं हो सकता है कि आप रियासत का कंट्रोल और सियासत किसी और के हाथ में दे दे जो आपका मुखालिफ हो, आपके मुताबिक ना हो, फिर आप कोशिश करें उस सोसाइटी को सआदत अबदी नसीब कराएं, उसमें खैर बरकत भी ले आए, उसके अंदर एक बंदा, एक इंसान सोसाइटी का एक इकाई खुदा का एक सच्चा मोमिन बंदा बन जाए, बा ईमान बन जाए, बा तकवा बन जाए, परहेजगार बन जाए, मुत्तकी बन जाए, उसका करेक्टर बिल्कुल ठीक हो, ऑनेस्ट आदमी हो, दुनिया और आखरत दोनों में सक्सेसफुल हो, वगैरह वगैरह, ये कहता पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए खुदा कहता है कि देखें निजाम भी सोसाइटी में मेरा होगा, हुकूमत भी उन लोगों के हाथों में होगी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया होगा कि ऐसे 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 लोग होने चाहिए जो आपके हुक्मरान होंगे, निजाम भी वो जो चलाएंगे वो ये उस निजाम के खतूत होंगे, उसके मुताबिक वो चलेंगे, तब वो जो सोसाइटी होगी, वो जो माशरा होगा, वो इलाही माशरा कहलाएगा, खुदा का डिजाइन करदा निजाम के मुताबिक का माशरा कहलाएगा। ये कहना कि भाई मजहब इखलाकियात पर तवज्जो दे दे, मजहब जो है बाद समाजी जो इखलाकियात हैं उसको थोड़ा सा मैनेज कर ले, रियासत और सियासत में मुदाखलत ना करे, और फिर मजहब से ये भी तवक्को करें कि कहें जनाब दुनिया व आखरत की सआदत भी देनी है आपने, कहाँ से दे देंगे जब आपने 60% पे आपका कब्जा है, 40% से भी लेस देन 40% आपने दिया है मजहब के हवाले किया है, तो आप समझते हैं कि 40% से मजहब आपको 100% रिजल्ट निकाल के दे देगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कुरान में जगह जगह पर जहां पर भी जमीन में कंट्रोल की बात आती है, जमीन में हुक्मरानी की बात आती है, तो खुदा कहता है ये सालेह नेक अच्छे करेक्टर वाले लोगों के हाथ में होगा, और फिर खुदा वादा भी करता है, मेरा तुम्हारा तुम लोगों के साथ वादा है कि मैं एंड ऑफ द टाइम कयामत से पहले इस जमीन को मैं जरूर साले हाथों में दे दूंगा, पूरी जमीन पर उनकी हुक्मरानी होगी, पूरी जमीन का सिस्टम एक होगा और वही चलाएगा उस निजाम, जैसे आप सुनते रहते हैं व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लदीन नस्तुज़इफू फिल अर्ध व नजअलहुम अइमतन व नजअलहुम वारिसीन वलकद कतबना फिल ज़बूर मिन बाद ज़िक्र इन अल अर्ध यरिसुहा इबादिय सालिहून, इबादिय सालिहून साले लोगों के हाथ में दूंगा, इन्नल अर्ज कहा है, पूरी जमीन, पूरी की पूरी जमीन। अच्छा इसके इसी तरह सूरे हज में चलते हैं, चले वो टाइम आएगा तो आएगा, लेकिन उससे पहले भी तो कुछ जिम्मेदारियां, उसके इंतजार में सिर्फ नहीं रहना है, उससे पहले भी हमें भी कुछ करना है। कुरान मजीद सूरे हज आयत नंबर 44 उसके अंदर कह रहा है कि अल्लदीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ध, अगर हम जमीन में हमारे बताए हुए लोगों को हुक्मरानी दे दें, पावर उनको दे दें, मसलन खुदा कह रहा मैं अपने नबी के हाथ में पावर दे दूं, या मैं उन लोगों के हाथ में पावर दे दूं जिनके बारे में मैंने बताया है, ऐसे 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 उसको डिस्क्राइब किया है, इस तरह की शख्सियात होंगी, अगर इनको मैं पावर दे दूं तो वो पहले काम जमीन के अंदर किस चीज के ऊपर उनका मोहन फोकस होगा, क्या क्या काम करेंगे, करें अल्लदीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्द अकामु सलात, बंदगी खुदा को प्रमोट करेंगे, स्टेट पॉलिसी होगी कि लोग खुदा के बंदे बन जाएं, हमारे बंदे ना बने, हुकूमत के ताबेदार ना बने खुदा के ताबेदार बने, आईन के ताबेदार ना बने खुदा के ताबेदार बने, अगर आईन में खुदा की ताबेदारी है तो ठीक है, वो आईन क्योंकि खुदा का ताबेदार बना रहा है तो ठीक है, स्टेट को ओबे नहीं करना, खुदा को ओबे करना है। अल्लदीन इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ध अकामु सलात व आतु ज़कात, इकोनॉमिकल सिस्टम, ज़कात इज द साइन ऑफ इकोनॉमिकल सिस्टम है, ज़कात एक वसी माने में, ये आप जो सदके निकालते हैं, किसी को खैरात करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, सब ज़कात के अंदर आता है, वो ज़कात जो फिक के अंदर है वो स्पेसिफिक आयात में उसको अलग तरीके से डिफाइन किया है, यहाँ जनरल टर्म है असल में जो ज़कात है, तो ज़कात कह रहे हैं इकोनॉमिकली आदलाना निजाम होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी खरबों डॉलर लूटे और दुनिया के किसी अमीर तरीन शहर के अंदर जाकर एवन फील्ड में अपार्टमेंट खरीद के बैठ जाए और आप तमाशा देखते रहे, आप चीखते रहे, आपके लिए कोई मसला हल ही नहीं हो सके, एक आदमी कराची पोर्ट से अपनी शिपें भर भर के कैश दुबई में ले जाके उसको जो है ब्लैक मनी को व्हाइट करके वापस लेके आ जाए, ये कोई सिस्टम नहीं है, बराबर आदलाना निजाम होगा, गरीब का ख्याल ज्यादा रखा जाएगा, इकोनॉमिकली जो तकसीम होगी वो मुनसिफाना होगी। आप इससे अंदाजा लगा लें, हजरत इमाम मेहदी अजल्लाह ताला फरजहु शरीफ सल्ली अला मुहम्मद के बारे में ये हमारी हादिस में है, जब आप तशरीफ लाएंगे तो इतना आदलाना निजाम होगा, इंसानों के दरमियान अदल की बात नहीं हो रही है, मखलूकात खुदा में अदल का निजाम कायम करेंगे। मतलब क्या है इसका, मखलूकात खुदा में अदल के निजाम का मतलब क्या है? अब बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, बहुत सारे हमारे आज के बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज के साथ आज की दुनिया के रिलेटेड हैं, एंट्री नहीं करते उसमें, फिर मोटी मोटी बातें बताते हैं, आप साहेब फहम फरासत है। नंबर एक, दरख्तों को उसका हक मिलेगा, जंगल को उसका हक मिलेगा, सब्जे को उसका हक मिलेगा, जानवरों को उसका हक मिलेगा। ये नहीं होगा कि हमारी गलियों में कुत्ते बेचारा आवारा फिर रहे हैं, न उसे कोई देखने वाला है, न उसे पालने वाला है, न उसको केयर करने वाला है, न उसकी भूख और प्यास का ख्याल रखने वाला है। ये नहीं होगा कि ये नशी जानवर खुदा की मखलूक है, आप इसे उठा के कहें वो कर दें, किसी जगह में रख दें। मैंने पिछले साल पता नहीं यहां पढ़ा या नहीं पढ़ा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के हबीब मेराज पे तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में देखा एक औरत बैठी है बड़ी शान और शौकत के साथ, मजे में, बड़ी पोजीशन वाली है, खातून है। जिब्रील से अल्लाह के मुकालिमा हुआ, कहा जिब्रील ये बताओ ये खातून है कौन, बड़ी मकाम मिला है इसको खुदा की तरफ से, कहा या रसूल अल्लाह ये बड़ी गंदी औरत थी, कहा ये तो रेड लाइट वाली औरत थी हमारी जबान में, बस इसने एक ऐसी नेकी की थी कि अल्लाह को वो नेकी इतनी पसंद आई और उस नेकी के बाद उसकी मौत वाकई हुई, खुदा ने कहा मैं पिछले सारे गुनाह इसके बख्श देता हूँ, इस नेकी की वजह से इसको ये स्टेटस मिला है। ये औरत रेड लाइट से ताल्लुक रखती थी, हुआ ये कि अपने रेड लाइट के कामों से फारिग होकर आ रही थी तो रास्ते में देखा एक कुएं के किनारे तपती धूप में गर्मी में कुत्ता जो है प्यास से हांफ रहा है और कुएं का जो पानी है वो बहुत नीचे है। ये खातून गई, इसने कोशिश की कि डोल के जरिए से खेचे तो रस्सी छोटी थी, वो डोल नीचे पानी में पहुंच नहीं रहा था, इसने खातून ने अपनी चादर उतारी, डोल के साथ बांधा, नीचे डाल दिया, पानी नीचे से निकाला, उस कुत्ते को पिलाया और वो कुत्ता जो जान वाला था मरने के लिए तैयार था उसकी जान बच गई। उसके बाद इस खातून की मौत वाकई हो गई, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया मैंने इसके सारे गुनाह बख्श दिए हैं, इसने मेरी मखलूक को इस मुसीबत के आलम में उसकी जान बचाई। ये इस्लाम है, ये वाक्य जो बयान कर रहा हूं, शिया सुनी दोनों बड़े बड़े उलमा बयान करते हैं, शिया उलमा में आयतुल्लाह जवादी आमली मौजूद है, मुफसिर कुरान, मेरे ख्याल में आलम इस्लाम की सबसे बड़ी तफसीर इस वक्त लिख रहे हैं और बड़ी गहरी अमीक तफसीर स्टिल कई सालों से लिख रहे हैं, फलसफी हैं, आरिफ बिल्ला हैं, और इस वक्त मेरे ख्याल में जो टॉप ऑफ उलमा में से जैसे अल्लामा तबाताबाई, शहीद मुर्ज़ा मुतारी जैसे अफराद थे, उन सबसे 100 कदम आगे हैं। अगर आप इस तरफ आना चाहते हैं तो मिस्र के शेख शलतूत मुफ्ती आजम है मिस्र गुजरे हैं, उन्होंने अपनी तफसीर के अंदर बयान किया है इसको, हत्ता मैंने तफसीर इब्ने कसीर में पढ़ा है इसको, अहले सुन्नत की एक बड़ी तफसीर है। इसी तरह डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने इसको कोट किया, मुझे याद है, ये इस्लाम, ये देख रहे, जानवरों तक के साथ इंसाफ के साथ पेश आना। इसलिए पता है क्या बोलते हैं, इंसाफ इस लेवल तक चला जाएगा कि भेड़िया और भेड़ इकट्ठे पानी पिएंगे, वो भेड़िया अटैक नहीं करेगा जिसके नेचर में अटैक करना है, क्यों, उसका पेट सेर हो चुका है। यह ऐसा नहीं है कि जब वो आदलाना निजाम कायम होगा तो कहेंगे जंगल के जानवरों को छोड़ दो दफा करो, जैसे मरते हैं जिंदा रहते, नहीं, कहेंगे जंगल के जानवरों का भी ख्याल करना, आवारा जानवरों को भी ख्याल करना है, किसी को हक नहीं है गली चलते हुए रास्ते में कोई परिंदा मिले तो पत्थर उठा के मारे, ना ये बिल्कुल इजाजत नहीं है इसकी, रास्ता चलते चलते मुझे एक दरख्त नजर आया मैंने उसकी शाख तोड़ दी, ये इजाजत नहीं है। वो दरख्त कल को पूछेगा खुदाया मुझसे तोड़ा क्यों था, मुझे किस रीजन से तोड़ा, कुछ जरूरत थी तुम्हें, तुम अशरफ मखलूक हो, ठीक है अगर तुम्हारी जरूरत है तो यस वेल एंड गुड तुम तोड़ सकते हो, विदाउट एनी रीजन सब्जी को खराब क्यों किया, खुदाया इसने मेरे शहर में फैक्ट्री लगा दी, मेरी फजा को आलूदा कर दिया, अब मैं, हमारे नस्लें जो आ रही हैं सांस ले रही हैं गंदी हवा में, आलूदा हवा में, पोल्यूशन पैदा कर दिया इसने, इसको चाहे थे फैक्ट्री ले जाके किसी दूर जगह पे लगा देता, जहां पर ऐसी फैक्ट्री लगाई क्यों जो इतने पोल्यूशन करती है, आबादी के अंदर क्यों लगाई आप, सारी चीजें हैं, हुकूक हैं।
ऐसे नहीं कर सकते हैं। एक बंद कमरे के अंदर एक आदमी अकेला सिगरेट पीता है और 10 और आदमियों को अगर उसके सिगरेट पीने की वजह से वो बीमार हो जाते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल। सेम द कोरोना वायरस में आपने देखा, हमारे सारे फुका और मुश्तहिदीन ने कहा आपको अलाउ नहीं है, अगर आपको वायरस इफेक्टेड हो चुके हैं तो आप दूसरों को नहीं कर सकते, दूसरों को करते हैं और बीमार हो जाते हो आप जिम्मेदार हैं। सेम यहां पर भी है, अगर एक बंद कमरे में ऐसे बैठे आलूदगी नहीं की जा सकती है। ये कुरान का निजाम ये है, अल्लदीन इन मकन्ना हुम फिल अर्द, अगर हम उसे जमीन में ताकत और पावर दे दें तो ये सारे काम करेंगे। अब ये बताएं कि आपको इस दीन से कुछ चिड़ है? आपने दीन के नाम पर जिस दीन को देखा था जनाब अली, वो दीन था ही नहीं। पहली बात, मुसलमान मुफक्किरों, दानिश्वरों, लिखारियों, गौर से सुनो, यूरोप ने जिस दीन को निकाला था वो उनकी तरक्की के रास्ते का रुकावट था। आपका दीन आपकी तरक्की को सपोर्ट करता है, मदद करता है। आपका दीन कहता है जमीन और आसमान पर गौर कर, जो गौर और फिक्र नहीं करते हैं उनको कहता है दुनिया के बदतरीन जानवर है। इंसान होने के बावजूद कहता है अकल इस्तेमाल नहीं करता, गौर और फिक्र नहीं करता, रिसर्च नहीं करता है, कहता है ये दुनिया के सबसे शरीर तरीन, शर तरीन जानवर है। क्या आयत का अल्फाज है? इन्ना शर्र दवाबी। देखे कह सकता था इन्ना मसलन अख्तर दवाबी, कह सकता था कि दुनिया के बड़े जानवर, कहता है शर्र दवा। शर पता है ना, शर शरारत से भी है, शर यानी बुराई, बुरे तरीन जानवर। इन्न शर्र दवाबी अंद अल्लाह, खुदा के नजदीक जमीन के सबसे बुरे तरीन जानवर वो हैं। तुम उन बुकम लदीन हम ला याकिलून, वो इंसान जो गूंगा बेरा बनता है और कोई तहकीक और रिसर्च जुस्तजू और अकल को इस्तेमाल नहीं करता, कहता वो बदतरीन जानवर है वो जमीन का। ये आपका दीन तो मदद कर रहा है आपको, कहां से रुकावट बन गई है? ये दीन रुकावट था। आपने कहा जो, क्योंकि इन्होंने कहा मजहब अगर सियासत और रियासत में आ जाए तो बदबख्ती पैदा हो, आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, मुस्लिम माशरों के अंदर लाया और कहा जी मजहब को रियासत से दूर। हमारे पाकिस्तान में तो एक पार्टी है, उसको तो सुबह शाम ये विरत करना है, उसने कसम खाई भी है कि ये लोगों को असबर करा दिया जाए। मजहब और रियासत को अलग, मजहब और सियासत को अलग, मजहब और रियासत को अलग, मजहब और, क्यों भाई? क्योंकि यूरोप में ये ऐसा हुआ था, कुरून वुस्ता में, डार्क एजिस में, रोनसांस हो गया, फ्रांस के अंदर से मूवमेंट चली वगैरह, मार्टिन लोटर वगैरह के जरिए से, और अब वो क्योंकि तरक्की करके आगे निकले हैं तो हम भी अपने मजहब को अगर बंद कर देंगे मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, तो हम तरक्की करेंगे। नहीं अजीजो, वो रुकावट थी, ये आपको सपोर्ट दे रही है, ये डिफरेंट है। मजहब को एक जर्नल टाइटल यूज किया, सबके ऊपर लगा दिया आपने, ऐसा नहीं है। जैसे मैं एक अंदाजा देने की कोशिश कर रहा हूँ, लास्ट वर्ड्स इस सेशन में, वो ये है, यहाँ बाज औकात हम मिलते हैं जू ही कहते ना मुसलमान, तो बाज लोग जिनको दाइश या अलकायदा जैसे जराइम पेशा ग्रुप्स का कंसेप्ट इस्लाम के नाम पर होता है, वो फौरन उधर चले जाते हैं। हमें बताना पड़ता है देखो हम उस मेंटालिटी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। या मसलन अगर आप जो है इवन इंटरनेट पे चले जाएं, लिख लें शिया मसलन, तो आपको फौरन एक ब्लड स्पॉट नजर आने लग जाएगा शियत के नाम के साथ ही। वो कहते अच्छा शिया ये, अल्लाह अकबर, लॉजिकल थिंकिंग रखने वाला मजहब, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट वाला मजहब, कुछ लोगों के पास ऐसे उल्टे सीधी हरकतों से, क्योंकि वही चीज हाईलाइट हो गई, शियत मतलब वो जो तलवारें लेके मारते हैं खुद को, खूना खून करते हैं, खून आलूद करते हैं, अपने बच्चों के सरों पे भी मारते हैं। अब तो बाज अरब मुल्कों के अंदर खवातीन भी निकली हैं चादरें हटा के कमे मारती हैं, ये है शियत। अब देखे टोटली अलग पिक्चर दी है, नहीं कहेंगे इस ये दीन रियासत में आएगा, रियासत के कंट्रोल ये दीन के फॉलोअर्स करेंगे, इनका आने वाला इमाम करेगा, ये मुसलमानों का वो जो इमाम मेहदी आ रहा है, फिर मसीहा नामी फिल्में बनेंगी डिफरेंट तरीकों से, फिर आर्मगेडोन जैसी फिल्में बननी लग जाएंगी, सीरीज बनेंगी। अब कहेंगे ये खतरनाक लोग हैं, देखो अगर ये आए कल को इन्होंने हुक्मरानी करनी है यहां पर, ये तो ये करने वाले हैं, हमारे बच्चों के सरों पर तलवारें मारेंगे, ये तो वहशी लोग हैं, इनको इंसानियत ही नहीं है, ये देख रहे हो ये लोगों के गले काट रहे हैं यार ले आके यहाँ पर, ये तो आज के दौर में औरतों को पकड़ते हैं, उनको कनीजे बनाते हैं, जंजीरों से बांध के बाजार में खड़े करके बोली लगाते हैं उनकी, आते हैं ऐसे नकाब उठा के, कहते हैं मैं $100 दूंगा, दूसरा कहता है मैं $200 दूंगा, ये दुनिया के सामने वीडियोज आ रही है। कहेंगे ये है इस्लाम शियत,
नो नो नो, हमें नहीं तो ये कभी रियासत में नहीं चाहिए, कभी सियासत में ऐसी मजहब नहीं चाहिए। अब वो नाजुल बलागा, कुरान, हदीस, इमाम हुसैन के अकवाल, हजरत जैनब की फरमाइशात सारी कहाँ गई? नहीं है, क्योंकि वो हमने पेश ही नहीं किया। अब कुछ पॉइंट्स थे, अब उन्हें रहने देते हैं। इमाम हुसैन अलैहि सलाम का 58 हिजरी में, 68 में वाकया करबला हुआ है, बिफोर 68 61 में वाकया करबला हुआ है, 58 हिजरी, 3 साल या 2.5 साल पहले मीना में आप हज के लिए तशरीफ ले गए, तो वहां एक खुतबा दिया इंटेलेक्चुअल्स की गैदरिंग में, जिनमें आपकी खानदान के भी लोग थे और बड़े बड़े जलील कदर सहाबी भी थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, सोसाइटी के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनके दरमियान एक बहुत बड़ा खुतबा दिया है। बड़ा कैटेगराइज है, कैटेगरियां हैं उस खुतबे के अंदर, और बड़ी बड़ी चीजें खोली वहां पर। कुछ जुमले इरशाद फरमा रहे हैं, मैं उस खुतबे के कुछ जुमले इरशाद यानी चाहूंगा कि आपके दरमियान बयान करूं। कह रहे हैं, फबदा अल्लाह बिल अम्र बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर, आपको एक चीज जो मिलेगी कुरान से लेकर हदीस से लेकर इमाम हुसैन और करबला तक, वो मिलेगी जगह जगह पर अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, हत्ता ज्यारतें पढ़ेंगे उसमें भी मिलेंगे। ये अच्छाई की तरफ लोगों को दावत देना, बुराई से लोगों को रोकना। फरमाते हैं, फबदा अल्लाह बिल अम्र वल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर फरीजतुन मिन्हु लिल्म बेअन्नहा इज़ा अदैत व अकमत अस्तकमत अल फराइज़। अगर आप ये अमर बिल मारूफ और नहीं अल मुनकर करेंगे, तो आपने जो इस्लाम के फरीजों की पिलर्स हैं ना, उसको आपने मजबूत कर दिया है। यानी इस्लाम के पिलर्स को आप मजबूत करेंगे अगर आप ये काम करेंगे तो। और ये काम बड़े लेवल पर कैसे हो सकता है? आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, वो तो छोटे छोटे लेवल पर है। स्टेट करेगी ये काम, स्टेट आमिर बिल मारूफ, स्टेट नहा अनिल मुनकर हो। आप हमारी फिका को भी देखें, फिके हनफी है, फिके शाफी है, फिके मालिकी है, फिके जाफरिया है, सबको उठाकर देखें। फिके जाफरिया थोड़ी अपग्रेडेड है इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम की वजह से। तो मसल्ली अला मोहम्मद, बाकी क्योंकि इमाम के ही शागिर्द हैं, तो जाहिर है कि उनके अंदर भी ये चीज मौजूद है। उसके अंदर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, एक हुक्मरान के पास जो अहम तरीन जिम्मेदारियां दी गई हैं, हुक्मरान को पता है क्या दिया है? वो यही दिया है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। और इमाम हुसैन अलैहि सलाम जब खुद आप निकल रहे थे, मदीने मुनव्वरा को छोड़ रहे थे, तो छोड़ते वक्त भी जो आपने वसीयत बाई रिटन, यानी कि जबानी बताया, खुतबा दिया हो नहीं, रिटन अपने दस्त मुबारक से लिखी, अपने चचाजात के मोहम्मद इब्ने हनफिया के हवाले कर दिया और कहा जी कि ये मेरी वसीयत है, हाजा मा औसा बिही हुसैन इब्ने अली, ये टाइटल है उसका। उसके अंदर भी आप देखें तो क्या फरमाते हैं, अपना पूरा एजेंडा दिया है ना, इस्लाह फी उम्मती जद्दी उरीद अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर व असीरु बिसीरति जद्दी व अबी। पांच बातें हैं, चार से पांच बातें हैं, उसके अंदर भी अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अब आप ये बताएं, एक स्टेट जब अच्छाई फैलाने के पीछे स्टेट मिशनरी लग जाए, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकल आएगा? जब आपकी स्टेट यूज हो रही है, मैं देखो, मैं एक छोटी सी एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। ईरान में कदरे रिलीजियस हुकूमत है, मैं नहीं कहूंगा 100% रिलीजियस हुकूमत है, वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनके सामने चैलेंजेस ज्यादा हैं जाहिर है कि। और खुदा ने भी कोई ऐसा वादा नहीं किया है कि 100% तुम कर सकोगे, 100% अगर हम कर सकते होते तो अपने किसी वली को जो है, वली मासूम को खुदा जो है महफूज करके जखीरे के तौर पे कभी भी ना रखते, अगर हमने ही सारा करना हो रहा होता। हमें अपनी मैक्सिमम कोशिश करनी है। आप देखें वहां पर स्टेट कोशिश करती है कि बुराई को रोके, जराइम को नहीं। कल भी मैंने अर्ज किया था, जराइम क्राइम की और डिफिनेशन है, बुराई की और डिफिनेशन। हर सोसाइटी के अंदर स्टेट कोशिश करती है कि खैर फैले, अच्छाई फैले, सिर्फ जराइम को रोकना नहीं, वो पूरी कोशिश है उनकी। आप इसीलिए देखते हैं हिजाब के खिलाफ वहां एक छोटी सी मूवमेंट मौजूद है, हालांकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा होंगे पूरे ईरान के अंदर, जो डेटा उनकी तरफ से दिया, मैं ऑनेस्टली बयान करता हूं, वो डेटा मैंने देखा हुआ है, पूरे ईरान के अंदर जो है ना 3 से 4 लाख लोग हैं, इनकी 8 से 9 करोड़ आबादी, उसके अंदर 3 से 4 लाख लोग ऐसे हैं जो एंटी वैल्यूज है, इस्लामिक वैल्यूज है, उनमें से एक हिजाब है। फ्रीडम, वो ऐसी फ्रीडम चाहते हैं जैसे कि गैर इस्लामिक सोसाइटीज के अंदर या एथियस सोसाइटीज के अंदर मौजूद है, वहां पर जो है ये चीज मौजूद है, लेकिन स्टेट कोशिश कर रही है कि जो है ऐसा ना हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी इसलिए आप देखते हैं कि अपने खुतबों के अंदर बार बार एक चीज की तरफ अलर्ट करते थे। मसलन जब आप करबला में तशरीफ ले आए तो किसी ने जो है आपसे मुख्तलिफ सवालात किए, उसके बाद एक सवाल यह था कि अपने रसूलुल्लाह हमें पूरा यकीन है कि ये लश्कर आपको यहाँ पे कत्ल कर देगा और आपको शहीद करेगा और ये यकीनी बात है, तो क्या अच्छा नहीं है कि किसी तरह हम आपको मतलब यहाँ से कोई तरीका ऐसा अख्तियार करें कि आपकी जान को हम महफूज करें, क्योंकि आप जखीरे इलाही हैं, जाहिर है कि आप अल्लाह के नुमाइंदे हैं, हम तो नहीं चाहेंगे कि अजीजों के हाथों आप शहीद हो जाएं। जाहिर है उसकी अपनी एक मुखलिसाना कोशिश है, एक नेक नियति पर मबनी है। इमाम आली मकाम उसे फरमाते हैं नहीं, कहा कि वही जुमले इरशाद फरमाया जो मदीने में इरशाद फरमाया था, मदीने में जब जनाब उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन पैगंबर अकरम की जोजा मोहतरमा ने, क्योंकि उम्मे सलमा के घर पे आए थे लोग, मैं मसाइब जो है रिवायती तरीके से नहीं पढ़ने वाला हूँ, उम्मे सलमा के घर आए लोग, जब ये पता चला कि नवासे रसूल मदीना छोड़ के जा रहा है, उस वक्त इमाम हुसैन अलैहि सलाम एक दफा नाना की कब्र पे तशरीफ ले गए थे और अपनी वालिदा की कब्र पे तशरीफ ले गए थे, अलविदा कर चुके थे, सेकंड टाइम जा रहे थे, सेकंड टाइम चले गए थे, वो जनाब उम्मे सलमा को जब पता चला बेताबी के साथ दरवाजे से बाहर आ गई और काफी सारी खवातीन भी हैं और असहाब भी हैं, खड़ी हो गई वहां पर और इमाम का इंतजार करने लगी, हत्ता कुछ लोग आए इमाम की तरफ, बकी जन्नतुल बकी और रोजे रसूल की तरफ की इमाम को बुलाए और आके इमाम आली मकाम को पैगाम दिया कि उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा आपका इंतजार कर रही हैं। इमाम जो है हजरत उम्मे सलमा के पास तशरीफ ले गए और उम्मे सलमा ने आवाज दी, बुनैया या हुसैन माजा असमा मिनक, कहा कि मेरे बेटे हुसैन ये मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रही हूँ कि तुम अपने जो है अहलो आयाल के साथ मदीना छोड़कर तुम जाने लगे हो। पहले यहां पर जो है ना इमाम एक दुखी बात करते हैं, कहते हैं अम्मा जान, कहते हैं अगर शहर में कोई रहने न दे तो कैसे रहा जाए, ये एक जाहिर है कि मादराना और पिसराना गुफ्तगू के जुमले हैं। उसके बाद जो है इमाम थोड़ी वजाहत करते हैं कि यजीद हुक्मरान हो चुका है और वो मुझसे तलब बेयत कर रहा है। उम्मे सलमा कहती है कि बेटा मत चले जाओ, नहीं जाओ यहाँ से, ये तुम्हें मारेंगे कत्ल करेंगे, मैंने हुजूर पाक से बड़ी हदीसें सुनी हैं तुम्हारे बारे में, तो तुम ये मुझे मेरा दिल घबरा रहा है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए इस वक्त। वहां उस वक्त हजरत इमाम हुसैन अलैहि सलाम वो ख्वाब का तذکرہ करते हैं जो मनामिया की कैफियत में, एक इल्का की कैफियत में रोजे रसूल में आपने देखा होता है। रोजे रसूल में कहते हैं कि मैं रोजे रसूल में था, नाना के रोजे पे था, मैंने मनामिया में देखा कि मेरे नाना मुझसे फरमा रहे हैं या हुसैन इन अल्लाह शाह अय्यरा का कतीला, कहते हैं बेटा हुसैन खुदा अब चाह रहा है कि आप दीन खुदा के कयाम और बका के लिए निकलो, बेशक इसमें मारे जाओ, कत्ल कर दिए जाओ। जनाब उम्मे सलमा खामोश हो जाती है, फिर जो है उम्मे सलमा कहती हैं तो बेटा कह रही है कि फिर ये बच्चों और ख्वातीन को तो छोड़ के जाओ। फिर इमाम फरमाते हैं उस ख्वाब के अंदर मेरे नाना ने साथ में ये भी फरमाया व यारा हुन सबाया, शहादत सिर्फ काफी नहीं है, उस शहादत की बका और उसके पैगाम को फैलाने के लिए ख्वातीन इसमत तहारत और बच्चों का भी साथ होना जरूरी है। ये जुमले इमाम ने उस सहाबी को रेगिस्तान करबला में 10 मुहर्रम को ये जुमले इरशाद फरमाए, और आप जानते हैं कि इमाम आली मकाम आखिरी शहीद हैं करबला के अंदर, क्योंकि ना असहाब ने इजाजत दी इमाम को कि पहले जाके शहादत पेश करें, ना जो है खानदान इस्मत व तहारत के जवानों ने इस बात को बर्दाश्त किया कि इमाम पहले शहीद हो जाएं। हत्ता अबुल फजल अब्बास अलैहि सलाम भी ये गवारा नहीं करते थे, कई बार अबुल फजल अब्बास अलैहि सलाम इमाम के पास आए कि मौला मुझे इजाजत दे दो, हर बार इमाम हुसैन अलैहि सलाम के जुमले होते थे कि अगर आप शहीद हो जाएंगे ना मेरा लश्कर तितर बितर हो जाएगा, आप अंतलिवा अंतलिवा एक आप मेरे लश्कर के अलमदार हैं, अगर आप जो है शहीद हो जाएंगे तो फिर कहा कि लश्कर कौन कंट्रोल करेगा, ये बच्चे हैं खवातीन हैं, वो अलमदार अब्बास के वजूद को देखकर उनकी मौजूदगी में एक एहसास इत्मीनान रखते हैं, सुकून का एहसास करते हैं। लेकिन जब मासूम सकीना के मशकीजे को लेकर जब आए हैं आपने सुना है कि मासूम सकीना किस तरह खेमे में आए हैं, वहां पर बच्चे अलतश कर रहे थे। जाहिर है कि वहां पे हर 5 मिनट के बाद इंसान को प्यास लगती है, इतनी गर्मी, ओपन एयर है, कोई ऐसा साहिबा नहीं है, इतनी गर्मी है। उस गर्मी में उस वक्त हजरत मासूम सकीना मशकीजा लेके आती हैं। रावी कहता है मैंने मशकीजे को बजते सुना। बजते सुने का मतलब असल में ये कह रहा है चमड़े के बने होते थे ना ये मशकीजे, चमड़ा होता था, जब चमड़ा खुश्क हो जाए तो फिर बजने आवाज करने लग जाता है, हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। बजते सुना यानी खुश्क हो चुका था। और हजरत सकीना वो मशकीजा देती है, अलमदार अब्बास मशकीजा लेके बाहर आ जाते हैं खेमे से। इमाम हुसैन अलैहि सलाम से मुलाकात करते हैं, कहते हैं कि मौला मुझे इजाजत दे दे कि मेरे नहर फुरात से पानी लेके आ जाऊं, कम से कम इजाजत देते हैं। और बड़ी हसरत भरी निगाहों से अलमदार अब्बास को देखते हैं। बाज रिवायात में है, कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर अब्बास तुम चले गए तो कहा मेरे लश्कर का क्या होगा, और अलमदार अब्बास ने जवाब दिया मौला वो लश्कर कहाँ पर है जिसका मैं अलमदार था, अब इस वक्त या आप हैं या मैं हूं। मौला इजाजत देते हैं, कैसे चले जाते हैं। अलमदार अब्बास की जो वफादारी की सिफत है आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, वो भी अली के फर्जंद हैं, अली के बेटे हैं, लेकिन इमाम आली मकाम को कभी जिंदगी में भाई कहकर बरादरी नहीं जिताई अलमदार अब्बास ने। हमारे पास मुस्तनद रिवायात है, उसके अंदर कहते हैं हमेशा आका मौला कहकर पुकारते थे। माँ ने तरबियत भी ऐसी की थी, हत्ता माँ ने कहा था मेरा नाम फातिमा है तो फातिमा कहकर मुझे ना बुलाओ, इसलिए कि कहें ऐसा ना हो कि हसन और हुसैन अलैहि सलाम को महसूस इतनी अजमत और इतने जो है बुलंदी रखने वाली ये पूरी खानदान जो है जनाबे उम्मुल बनीन की औलाद पूरे के पूरे शहीद हो गए करबला में। अबुल फजल अब्बास जाते हैं, आप देखें अबुल फजल अब्बास एक सिपा सालार हैं, हरकत में भी रहते हैं, प्यासे भी हैं, पानी तक पहुंच भी जाते हैं लेकिन पानी को गिराते हैं, पीते नहीं हैं और अशार पढ़ते हैं। रावी कहता है कि आलमदार अब्बास खुद से मुखातब हैं, अपने आप से कहते हैं कि ए अब्बास क्या तेरा जमीर गवारा करता है कि तेरा आका और उसके बच्चे खेमों में अलतश की फरियाद करते हुए प्यासे हो और तू नहरे फुरात पे पहुंचा है, कब्जा कर चुका है, अब तू पानी पी लो। कहते पानी को वापस गिरा देते हैं, मश्क सकीना को भरते हैं और मश्क सकीना को पहले सीने से लगाते हैं अलमदार अब्बास। लेकिन मालूम है कि दुश्मन ने सामने से हमला करना है, पुश पे ले लेते हैं मश्क सकीजा को, मश्क हजरत सकीना को अलम उठाते हैं, तलवार को नियाम से निकालते हैं, घोड़े को एड़ी लगाते हैं और खेमगा की तरफ तेजी से बचना चाहते हैं। रिवायात जो बताती है उससे साफ वाजे होता है कि अलमदार अब्बास इस वक्त लड़ने के मूड में नहीं है, इरादे ये नहीं कर रहे हैं कि मैं दुश्मन से लड़ूंगा, इनका मुकाबला करूंगा, बल्कि अलमदार अब्बास सोचते हैं मैं पहले पानी तो पहुंचा दूं खेमगा में, उसके बाद मैं जो है दुश्मन अश्किया से लड़ूंगा। सारी तवज्जो पूरी कोशिश मशकीजे को बचाने के ऊपर लगी है, आखिर क्यों ना हो, एक मासूम बच्ची खेमगा में इंतजार कर रही है, बच्चों को दिलासे दे रही है कि मेरे चचा गए हैं, देखो खबरें आ रही है चचा ने नहरे फुरात पर कब्जा कर लिया है, मशकीजे को पानी से भर लिया है, बच्चों के अंदर एक उम्मीद पैदा हो गई जो आलतश कर रहे थे, जिनके होंठ सूख गए थे, जिनकी जबानें इस कदर सूखी थी कि कांटे आ गए थे उसके ऊपर, बच्चे भी उम्मीद में हैं। लेकिन इतने में एक नारा फजा में गूंजता है, ये नारे का तर्जमा ये है कि वल्लाह इनका तुम यमीनी, खुदा की कसम अगर तुम लोगों ने मेरे दाएं हाथ को कलम कर दिया, तुम क्या सोचते हो दुश्मनाने खुदा कि मैं हुसैन जो हुज्जतुल्ला है उसकी बेयत से हाथ खींचूंगा, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। कुछ देर के बाद फिर आवाज आती है, मालूम होता है अलमदार अब्बास का दूसरा बाजू भी शहीद हो चुका है। यहां तक तो बात जो है फिर भी हौसले की थी बच्चों के लिए, लेकिन एक मरतबा आवाज फजा में गूंजती है, ये वो आवाज थी जब मशकीजे पे तीर लगे थे, अब्बास के सारे अरमान डूब गए। अलमदार अब्बास की आवाज फजा में गूंजी, मेरे आका मेरी खबर ले लो। मैं नहीं जानता दोनों बाजू कलम हुए थे, घोड़े की सीन से जमीन पे किस तरह आ रहे थे। कोई भी इंसान ऊंचाई से गिरता है सबसे पहले हाथों को जमीन पे रखता है। मेरे मौला अब्बास ने सबसे पहले कौन सी चीज जमीन पे रखी? मौला हुसैन दौड़ते हुए अलमदार अब्बास के जनाजे की तरफ दौड़ते हुए बढ़ते हैं, करीब पहुंचते हैं, देखते हैं कि जिस्म नेजों के जख्मी से छिन्नी छिन्नी है, दोनों बाजू कलम हो चुके हैं। आखिरी वक्त है, अलमदार अब्बास कहते हैं, अलैका मिन्नी सलाम या मौलाई, मेरे आका मेरे मौला तुम पर मेरा दुरूद और सलाम हो। ये वो वक्त था कि इमाम हुसैन तड़प कर अलमदार अब्बास के सर अकदस को अपने सीने से लगा के कहते हैं, अखिल अब्बास, ओ मेरे भाई अब्बास, इस आखिरी वक्त में मुझे भाई कह के देखो, सारी जिंदगी मुझे आका मौला कहते रहे। यहाँ था कि रावी कहते हैं, लकद राई तू, मैंने देखा कि अब्बास तड़प उठे और हुसैन से लपट पड़े। फजा में अब्बास की आवाज गूंज रही थी, मेरे भाई हुसैन, मैं तुझे तनहा छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे माफ करना मेरे भाई, मुझे माफ करना। अल्लाह वसयालमुल्लदीन ظلموا أن يتقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وأهل التقوى.